ओम शांति। तमिलनाडु के सभी योगी, ज्ञानी, पवित्र और महान आत्माओं को बहुत बहुत याद प्यार, ओम शांति। टॉपिक बहुत ही पावरफुल और बड़ा रखा है, नंबर वन में कैसे आए और बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे हो। नंबर वन आना, देखो दो मालाएं हैं हमारे पास, बड़ी सुंदर 8 की और 108 की। 108 में 100+8 हैं, 8 पांचवें डोनर माने जाते हैं और 100 फर्स्ट डिवीजन वाले, ये सब नंबर वन में आई हुई आत्माएं हैं। यही 108 आत्माएं पूरे सतयुग पर राज भी करती हैं। इनको विजयी रतन भी कहा जाता है, अर्थात ये माया पर संपूर्ण रूप से विजयी होते हैं। और अश्रतन, ये तो बिल्कुल बाप समान बन जाते हैं। मैं आपको बाबा की वो गहरी बात सुनाऊं जो साकार में बाबा ने एक रात्रि क्लास में बताई थी। शिव बाबा है 100 डिग्री, ब्रह्मा 99, ममा 98 डिग्री और फिर बाकी 6 रतन, 97, 96, 95, 94, 93। तो इस तरह ये माला बनती है। नंबर वन टॉप मोस्ट स्टूडेंट 8, उनमें ब्रह्मा बाबा सबसे नंबर वन। अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए, ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दो बातें बहुत सूक्ष्म हो जाती हैं। इनको समझना भी सूक्ष्म है और इनको धारण करना भी सूक्ष्म है। वो है संपूर्ण निरहंकारी बनना और संपूर्ण समर्पण होना। संपूर्ण निरहंकारिता में भिन्न भिन्न तरह के ईगो, मैंपन, मेरापन, इन सभी का त्याग। इन सभी से जब आत्मा मुक्त हो जाती है, ऐसी पवित्र आत्मा डिवाइन सोल बन जाती है, दिव्यता से भरपूर। और इन 8 का संसार में सबसे अधिक महत्व होगा। यश रतन तो ऐसे हो जाएंगे आखिर में, जैसे इस सृष्टि पर 8 साकार भगवान हों। और विजय माला के पहले 25 मण के, यानी 8+17, ये बहुत श्रेष्ठ इष्ट देव देवियों के रूप में प्रख्यात होंगे जहां तहां। ये सब बाबा के द्वारा बताई गई बातें हैं। विजय माला में पहले 25 मण के बहुत महान हैं। तो आप सोच लें, आपको नंबर वन आना है या ऐसे ही सोचते हैं नंबर वन में आ जाएं तो अच्छा है। क्या डिटरमाइंड थॉट आपके अंदर है कि मुझे नंबर वन लेना है? उन स्टूडेंट्स की ओर देखो, आप में से भी कोई स्टूडेंट ऐसा रहा हो जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट होते हैं या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट 10 में आते हैं, 10 टॉप, या जिनको मान लो 12वीं का एग्जाम हो रहा है और आगे का, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, किसी को मेडिकल में, किसी को और कहीं, लक्ष्य मार्क्स 95-97% आ जाएं। ऐसे विद्यार्थियों पर आप विचार करें, वो कैसे एकाग्र हो जाते हैं। डिटरमाइंड थॉट, नो अदर इंटरेस्ट, केवल एक, ये उनका भी वैराग्य होता है। व्यर्थ से वैराग्य, गपशप से वैराग्य, टाइम वेस्ट करने से वैराग्य, केवल स्टडी, केवल टारगेट सामने। अपने से पूछेंगे सभी, क्या ऐसा महान टारगेट विद फुल डिटर्मिनेशन हमारे पास है? नंबर वन में आना है तो चारों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मार्क्स चाहिए। हमें डिस्टिंक्शन 75 पे नहीं हो जाती, 85 पे समझो। फुल मार्क्स चाहिए चारों सब्जेक्ट में। ये एक अलग सब्जेक्ट है और हमने इस पे क्लासेस भी कराई हैं, आप चिंतन कर लेना अपने अपने क्लासेस में। ज्ञान के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स किसे मिलेंगे? ज्ञान हमारी बुद्धि को डिवाइन और रिफाइन बनाता है। ज्ञान हमारे विजडम को बहुत सुंदर बना देता है, जिस विजडम में सभी के लिए शुभ भावनाएं, सद्भावनाएं भरी जाती हैं। हर ज्ञान की पॉइंट हमारे लिए एक शक्ति बन जाती है। योग याद रखेंगे, जो इजी योगी बनते हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ये भगवानों वाच है। हम कैसे इजी योगी बने हैं, कर्म योगी बने हैं, स्मृति स्वरूप हुए हैं। योग की तीसरी सुंदर स्थिति स्मृति स्वरूप। इस आधार पे मिलेंगे योग में फुल मार्क्स। धारणाएं, कुछ धारणाएं चुन लें जिनमें हमें परफेक्शन लानी है, संतुष्टता, संपूर्ण त्यागी, सादगी से, निर्मलता से, सरलता से भरा हुआ जीवन, इजी नेचर, संपूर्ण निरहंकारिता, शुभ भावनाओं से बिल्कुल आत्मा श्रृंगारी हुई हो, सब आत्माओं के लिए आत्मिक प्रेम हो जाए, घृणा ईर्षा नफरत द्वेष ये सब खत्म हो जाए, प्योरिटी बहुत अच्छी आ जाए। प्योरिटी को हम अलग से लेते हैं। निर्भयता आ जाए आत्मा में, अंतर्मुखता आ जाए, जो आकर्षण है कर्म इंद्रियों के, जो रस हैं उनसे मुक्त हो जाएं। ये धारणाएं और प्योरिटी अलग सब्जेक्ट। सेवाएं, सेवाएं तो सब कर रहे हैं और बाबा ने जो कुछ आज तक सेवाओं के बारे में गुह्य बातें कही हैं, सेवा यदि स्थिति को बिगाड़ती है तो वो सेवा सेवा नहीं है। कोई भी सेवा करने वाले चाहे कितने बड़े हैं, अगर वो योगी नहीं हैं तो उन्हें भी सेवाओं में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेवाओं में यदि मान की इच्छा, मैंपन, इंचार्ज बनने की भावना, अथॉरिटी मेरे पास हो, नाम हो मेरा बहुत, ऐसी आत्मा को सेवा में 100 मार्क्स नहीं मिलते। जो निष्काम भाव से, निमित्त भाव से, इस स्मृति से कि सब कुछ बाबा करा रहा है, उसका खेल चल रहा है, ऐसे जो सेवाएं करते हैं उनको फुल मार्क्स सेवा में मिलते हैं। तो चारों सब्जेक्ट में जब हम परफेक्ट होते हैं तब हम संपूर्ण बनते हैं, संपन्न बनते हैं। संपन्न माना सर्व खजानों में फुल, और संपूर्ण माना हमारी डिग्री 100 पर पहुंच जाए, जैसे आए थे वैसे हो जाए। अब हमें अपने को चेक करना है। बाबा के कुछ महावाक्य सुन लें। जो विन करते हैं वे नंबर वन आते हैं। विन, विन माना माया पर विजय। अगर किसी आत्मा ने अपने कड़ेपन को ही ना छोड़ा हो, कईयों में बड़े कड़े संस्कार रहते हैं और जीवन भर चलते आते रहते हैं। अगर किसी ने क्रोध ही न छोड़ा हो, पवित्रता तो हो, तो उसकी पवित्रता उसकी डिविनिटी नहीं बनती। ध्यान देंगे इस बात पर बहुत। हम पवित्र आत्माएं हैं तो चित्त शीतल हो जाना चाहिए, सांसारिक कोई भी इच्छाएं नहीं रहनी चाहिए। हमने माया को जीता है तो व्यर्थ संकल्पों का युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए। पांचों विकार और उसके जो छोटे रूप हैं सब पर संपूर्ण विजय हो। न किसी के लिए ईर्ष्या रहे, न किसी को गिराएं चढ़ाएं, न किसी से बदला लें। जो पावरफुल होते हैं वो क्षमाशील होते हैं, और जो किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देते वो एक दिन आएगा, सबसे पीछे खड़े होंगे, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। महत्व उनका होगा जो विजयी होंगे, जिन्होंने अपने जीवन को डिविनिटी से भरा होगा, जो महान बन गए होंगे, जिनके विचार महान, संस्कार महान, दातापन के संस्कार, त्याग के संस्कार, ऐसी आत्माएं नंबर वन में आएंगी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है विकारों को जीतना, एक एक पर एक एक क्लास हो सकती है। एक के प्यार में जो मगन हो जाएंगे वो नंबर वन में आएंगे, जिन्होंने अपनी स्थिति को एक रस बना लिया होगा, कर्मेंद्रियों के रसों से जो मुक्त हो गए होंगे वो नंबर वन में आएंगे। तो विजयमाला में आना है, नंबर वन लेना है, अर्थात विजयमाला में आना है। तो अब बड़ी बातें हैं, सारे संसार से 108 आत्माएं निकलती हैं, और आप सबको पता हो कि भारत में अलग अलग क्षेत्र में ये आत्माएं हैं विजय रतन, क्योंकि उनकी वहां उपस्थिति उस एरिया के लिए कल्याणकारी रहती है। जैसे आपका तमिलनाडु है, हो सकता है इसमें 2-3 विजय रतन हो अलग अलग जगह, लेकिन वो विजय रतन कोई इंचार्ज हो ये जरूरी नहीं, वो योगी होंगे। तो विजयमाला में आना है, बहुत बड़ा अवार्ड है ये बाबा का, और ये अवार्ड उनको मिलता है, बाबा का महावाक्य याद कर लें, जो व्यर्थ को अवॉइड करते हैं उन्हें परमात्मा अवार्ड मिलता है। जो व्यर्थ को अवॉइड करते हैं और जो व्यर्थ में रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, खुशी भी नहीं होती उन्हें, उन्हें ये भी नहीं पता होता अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, उन्हें स्पिरिचुअल पावर की भी कोई खास अनुभूति नहीं होती। कई लोग व्यर्थ में परचिंतन में, उसने ये किया उसके लिए ये करना है, इसी में रहते हैं, और दूसरे कुछ लोग सेवाओं में बिजी रहते हैं, ये सेवा करनी, ये करनी, यहाँ जाना, इसके बाद ये करना है, ये भी साधारण संकल्प होते हैं। कोई सोचे हमारे संकल्प तो सेवाओं के रहते हैं, ठीक है, पुण्य होता है, लेकिन ऐसी आत्माएं भी योग युक्त नहीं बन पाती हैं, और कहीं ना कहीं चलते चलते कमजोरी आ जाती है। बहुत ऊंचा लक्ष्य अगर लेकर चलना है, महान लक्ष्य को लेकर चलना है तो जैसे हमने शुरू किया था फुल डिटरमाइंड थॉट, पूरा दृढ़ संकल्प, इधर उधर देखना नहीं है, मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो केवल मंजिल को देखते हैं। और जो इधर उधर देखते हैं फिर रुक जाते हैं देखने के लिए, भला उन्हें मंजिल कैसे मिलेगी। तो चेक योरसेल्फ, क्या कर रहे हैं, क्या करना है। बड़ा टॉपिक है तो मैं बातें भी बड़ी सुनाऊंगा आपको, छोटी नहीं, छोटी तो सदा ही सुनते हैं। जो 8 घंटे रोज योग करेंगे वही बाबा का नाम रोशन करेंगे, बाकी सब तो कारोबारी रह जाएंगे। अब आपको चेक करना है, मुझे कारोबारी बनकर रहना है या महान योगी स्थिति बनानी है। महान योगी, भगवान के साथ रहने वाले, जो उसके साथ रहेंगे उन्हें परम सुख मिलता रहेगा, जो उसके साथ रहेंगे उनकी शक्तियां प्राप्त करते रहेंगे, जो उनके साथ रहेंगे उनके संपूर्ण वाइब्रेशंस उनमें भी समाते जाएंगे, वो समान बन जाएंगे। तो 8 घंटा योग प्लान खुद बनाएंगे, क्योंकि हर एक की स्थिति परिस्थिति, मेंटल स्टेट, माइंड की पावर, बुद्धि की कैपेबिलिटी, ये सब अलग अलग होती है, दिनचर्या अलग अलग होती है। 8 घंटे कर्म योग, ऐसे कोई ना सोचे मुझे 8 घंटे बैठ जाना है। बैठने वाले कभी योगी नहीं बनते। योग को हमें नेचुरल जीवन में लाना है, और याद रखेंगे ऐसे योगी वही बनते हैं जो सरल चित्त होते हैं, इजी गोइंग नेचर वाले ही इजी योगी बनते हैं, जिनकी दैहिक दृष्टि समाप्त हो गई है वो श्रेष्ठ योगी बनते हैं, जो मान सम्मान पद पोजीशन से ऊपर निकल गए हैं वो श्रेष्ठ योगी बनते हैं, और जिन्हें यहाँ कुछ चाहिए उन्हें यहाँ मिल जाता है लेकिन योगी वे नहीं बन पाते हैं। संगम योग को बाबा ने ये वरदान दिया है, यहाँ जिसको जो चाहिए वो मिलता है, पर योगी बनना अलग ही चीज है। यहाँ का थोड़ा नाम मिल गया, यहाँ का पद मिल गया, धन मिल गया, ये सब ठीक है, संसार की जरूरत है, लेकिन योगी तो इन सब से ऊपर होता है। एक सच्चे योगी को मिलने वाला सुख इन सब से बहुत बड़ा होता है। मैं सोचा करता हूं जो लोग पद पोजीशन और मान सम्मान के पीछे भाग रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, जरा विचार कर लें, क्योंकि उन्हें ईश्वरीय सुखों की अनुभूति नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाबा की बातों को ध्यान से सुना नहीं है, क्योंकि वो इस सृष्टि के हीरो एक्टर नहीं हैं, वो विश्व महाराजन राजन या सम्राट बने नहीं हैं चारों युगों में, क्योंकि अगर वो राजा बने होते तो राजा के लिए ये छोटे छोटे पद क्या होते हैं, इनसे ऊपर होते हैं। तो हम सभी 8 घंटे योग का बहुत अच्छा प्लान करेंगे। एक शर्त है नंबर 1 आने की। दूसरी बात, अपनी प्योरिटी को अपनी शक्ति बनाएंगे। प्योरिटी केवल प्योरिटी ना रहे, हमारी शक्ति बन जाए, हमारे प्योर संस्कार संस्कार, देखो ध्यान दें आप, हमारे प्योर संस्कार देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करें, हमारी प्योरिटी हमारे चेहरे की डिविनिटी बन जाए, युद्ध खत्म। तो ब्रह्मचर्य, प्योरिटी और फिर अनिर्विकारी स्टेज जिसमें सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त होते हैं, जिसमें जो विकारों के बाल बच्चे हैं ये भी समाप्त हो जाते हैं, चित्त शांत रहने लगता है। संपूर्ण प्योरिटी की परिभाषा, डेफिनेशन बाबा ने दी है, मैंने कई बार सुनाई है, वो बाबा के ही शब्द हैं। वो संपूर्ण प्योरिटी अर्थात केवल व्यर्थ संकल्पों से ही मुक्त नहीं, बल्कि साधारण संकल्पों से भी दूर महान स्वमान के संकल्पों में रहना, ये संपूर्ण प्योरिटी है। हमारी प्योरिटी बढ़ती जा रही है या युद्ध है? हमारी प्योरिटी हमारी लाइट बन गई है या अभी भी मार्ग में कुछ अंधकार फैला हुआ है? हम संसार की इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं या केवल एक ही इच्छा है, महान योगी और पवित्र आत्मा बनने की? टॉक टू योर सेल्फ। तो हम सभी एक रस हो जाएं, कर्मेंद्रियों के रसों को छोड़ दें। उसमें भी बहुतों के पास बड़ा रस होता है, जीभ का रस, स्वाद इंद्री। इस जीभ के रस से मुक्त रहना, देख लें आप सभी, जीभ का रस क्या चीज है? अच्छा तो लगेगा खाना, सबको अपनी तरफ का ही खाना अच्छा लगता है। नॉर्थ इंडिया वालों को नॉर्थ इंडिया का, गुजरातियों को गुजराती भोजन, महाराष्ट्रियों को मराठी भोजन, तो सबका अलग अलग है। साउथ वालों के भी वैरायटी, अलग अलग भोजन है। ये तो सच है कि सबको अपना ही भोजन प्रिय होता है, क्योंकि वो जीवन भर खाया है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जीभ का रस हमें अपनी ओर खींच न रहा हो, कानों का रस, ये कान व्यर्थ सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन हम व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो गए हों। हमारी आंखें, जिसके लिए बाबा मुरलियों में बहुत कुछ सुनाते हैं, आंखें जरा भी क्रिमिनल ना हो, ये आंखें, ये दो आंख तीसरी आंख में बदल गई हो। सारा संसार तो संसार को दो आंखों से देखता है, और ब्राह्मण संसार वाले संसार को तीसरे नेत्र से देखें, ऐसी स्थिति हो जाए तो आंखों का रस, ये देखें वो देखें, सुंदर चीज देखें, सुंदरता सबको प्रिय है, उससे ऊपर तो चेक करेंगे अपने कर्मेंद्रियों के रसों को। इन सभी रसों से ऊपर रहने वाले ही एक रस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज पर ध्यान दें, एक सुंदर बैलेंस की मनुष्य को बहुत आवश्यकता होती है, इस बात पे गौर करेंगे सभी, अटेंशन देंगे। कई लोग बहुत अच्छा योग करते हैं, सबको दिखाई देते हैं ये बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, और वो होते भी हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। तो अगर परिस्थितियों में स्थिति एक रस नहीं रहती तो नंबर वन नहीं आएंगे। अभी हमने देखा कई बुजुर्ग माताएं, एक माता की तो ऐसी कहानी, 75 साल 75 years old, उसका पति 80 years old, दोनों ज्ञान में, पति ने शरीर छोड़ दिया। ये जो बहन थी ये डिप्रेशन में आ गई, मैं अकेली हो गई दुनिया में। इसको आप एनालिसिस करें, मोह है इसके पीछे, आसक्तियां हैं, बाबा को अपना साथी नहीं बनाया है, देहधारियों में अटके रहे हैं, तो स्थिति बिगड़ गई। ऐसी कोई परिस्थिति आती है, किसी की मृत्यु हो जाए, अब यही पेपर तो आगे आने वाले हैं बहुत, जब हम जानते हैं ये दुनिया खाली होने वाली है, खाली हो जाएगा संसार, तो जब सबको ही जाना होगा किस किस के लिए रोएंगे। अगर आत्मिक वृत्ति बन जाए तो ये मृत्यु कुछ नहीं लगेगी, वस्त्र बदलना है, मेरा क्या होगा। अब यहाँ निश्चय की भी परीक्षा होती है। कई परिवारों में ऐसे भी होता है, 5 लोग हैं मान लो, पति कमाने वाला है, उसकी मृत्यु हो गई, अब उन्हें लगता है हमारा क्या होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे या अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। लेकिन अगर बाबा पर विश्वास हो, हम उसके बच्चे हैं, तो स्थिति बिगड़ेगी नहीं और बाबा सब कुछ करेगा। अगर हम अपने को उसको सौंप दें तो बाबा सब कुछ करता रहेगा। तो विभिन्न परिस्थितियों में एक रस स्थिति, नंबर वन आत्मा की पहचान। तो 8 घंटे योग, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति, माया को जीतते जीतते फाइनली जीत लें, युद्ध समाप्त हो जाएगा, ये स्थिति आएगी। तीसरी चीज निरहंकारिता। मैंने 2 बातें आप सबको कही, 2 सूक्ष्म बातें हैं ज्ञान मार्ग पर। एक है समर्पणता, मैं पहले समर्पणता ले लेता हूं, डीप सब्जेक्ट है। एक है स्थूल समर्पणता, जैसे बाबा के यज्ञ में कितने हजार भाई बहने समर्पित कर चुके हैं अपना जीवन, बहुतों ने धन समर्पित किया है, धन लगाया है, अपना जीवन समर्पित किया, अपनी कलाएं, अपने आर्ट्स समर्पित किए हैं सेवाओं में, बहुतों ने अपनी बुद्धि को समर्पित किया है सेवाओं में, यानी बुद्धि को लगाया है। लेकिन समर्पणता इससे भी गहरी चीज है। समर्पणता अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा। इस तरह देखें आप इसको, किसी भी चीज में मेरापन न हो, तन तेरा, बच गई मैं आत्मा, मन तुझको अर्पित, तो मन के सारे संकल्प वही जो बाबा चाहता है। बहुत गहरा सब्जेक्ट है, मन का एक एक संकल्प तुमको अर्पित, व्यर्थ तो पहले ही अर्पित कर दिए, लेकिन सुंदर संकल्प भी वो हों जो प्रभु प्रिय हों। और बुद्धि तेरी, बुद्धि का समर्पण, इट टेक्स टाइम। बुद्धि में मनुष्य को बहुत ईगो रहता है, हम बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसे लोग हमारे पास भी आते हैं, हमें मिलते हैं, हमारा सामना भी होता है, जो सोचते हैं हमसे जैसा बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जिसकी बुद्धि बहुत भटकती हो वो बुद्धिमान नहीं, जिसकी बुद्धि एकाग्र न हुई हो वो बुद्धिमान नहीं है, जिसने अपनी बुद्धि को सुखदायी न बनाया हो वो भी बुद्धिमान नहीं है, जिसने अपनी बुद्धि में संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान न समा लिया हो वो भी बुद्धिमान नहीं है। लौकिक बुद्धिमानी अलग, हमने कितने लोगों को देखा पीएचडी की हुई है लेकिन लगते ऐसे जैसे बुद्धू हैं, सारी बुद्धि की एनर्जी पीएचडी करने में खर्च कर दी है, ये बहुतों के साथ हो रहा आजकल, तो बुद्धि बिल्कुल भोली सी बनकर रह गई है, वो कोई बहुत बुद्धिमान है ऐसा दिखाई नहीं देता। उनकी बुद्धि में चिंताएं रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, निगेटिव कंपटीशन भी रहता है, उनको भी बुद्धिमान नहीं कहेंगे। तो बुद्धि समर्पित, माना हमारी लौकिक बुद्धि बाबा को अर्पित, और बाबा जो बुद्धि दे रहे हैं, डिवाइन विजडम दे रहे हैं, उसको धारण कर लेना, यह है बुद्धि की समर्पणता। परिवार सब कुछ तेरा, बहुत अच्छी बात बाबा ने सिखाई, गृहस्थियों के लिए सिखाई। जो बच्चे अभी कर लेंगे, आप सभी जिन्होंने नहीं किया है, जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। अपने घरों को देखो आप और संकल्प करो, ये मेरा घर नहीं है, ये बाबा का यज्ञ है। कर दो अभी, एक मिनट के लिए आंखें बंद करो, अपने घरों को देखो, ये मेरा घर नहीं बाबा का यज्ञ है, मैं तो इसमें सेवाधारी हूं। तो आप जो भोजन खाएंगे वो ब्रह्मा भोजन हो जाएगा, और आपको यह आभास होगा कि स्वयं बाबा हमें खिला रहे हैं, हमने कमाया, हमने बनाया, हम खा रहे हैं, ये नहीं, बाबा खिला रहे हैं, ये उसका यज्ञ हो गया। तो आप अपने घर को बाबा का यज्ञ बना दो, ये है समर्पण भाव, मेरा नहीं। और चेक करो किन चीजों में मेरापन है। आपके घरों में कुछ ऐसी चीजें भी रखी हैं जो आपने संभाल के रखी हैं, कोई ज्वेलरी होगी, कोई कीमती चीज है जो आपने बहुत संभाल के रखी है, जिसमें आपका ममत्व है, उसको भी बाबा के हवाले कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि अब बाबा को दे दो, लेकिन वो बाबा का है तो उससे ममत्व मिट जाए। समर्पण भाव का अर्थ है मेरा कुछ नहीं, तो कहीं भी ममत्व न रहे। चेक करना है किन चीजों में मेरापन है, चाहे मेरा सेंटर की बात हो, चाहे मेरे विद्यार्थी ये बात हो, चाहे मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान, मेरा काम, ये सब भी मेरापन है। इन सब से हमें बाहर निकलना है, समर्पित कर दें अपना लौकिक सब कुछ, सब तेरा है, बाबा को अर्पित कर दें, अपनी सेवाएं भी उसको अर्पित कर दें, सेवाओं का परिणाम भी अर्पित कर दें। ये बहुत गहरी बात है, कर्मातीत वही बनते हैं जो कर्म के प्रभाव से अतीत माना ऊपर रहते हैं, और कर्म का जो परिणाम आता है उसके प्रभाव से भी ऊपर रहते हैं, बियॉन्ड। यानी सफलता मिली तो बहुत खुश, कम सफलता मिली तो चेहरे उतर गए, बहुत एप्रिसिएशन मिला तो आनंद ही आनंद है, किसी ने एप्रिशिएट न किया तो खुशी गुम है, ये नहीं। सब कुछ उसको अर्पित, हमारा काम था सेवा करना, बाकी जो कुछ है वो बाबा के हाथ में है। तो चेक करें, मैंपन को, समर्पणता को गहराई से देखेंगे। कहीं भी मन पर बोझ है तो हम समर्पित नहीं हैं, कहीं भी हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो हम समर्पित नहीं हैं। क्या होगा, कैसे होगा, हम समर्पित नहीं हैं। बोझ भी समर्पित, जिम्मेदारियां भी समर्पित, फिर समर्पित होकर जिम्मेदारियां पूर्ण करनी हैं। कई लोग इसको गलत समझ लेते हैं, साक्षी भाव को, कि हमें देखना है बस, करना कुछ नहीं है। लेकिन साक्षी भाव का अर्थ होता है डिटैच होकर देखना भी, लेकिन अपने कर्तव्य भी करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण करना, जो हमें वहाँ करना है वो भी करना। ये अभ्यास हम सभी करेंगे। अब है मैंपन की चेकिंग। मेरेपन से समर्पणता जुड़ता है, मैंपन। आप एक लिस्ट बना सकते हैं 15-16 पॉइंट्स की मैंपन की, जैसे मैं इस घर का बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, मैं कमाने वाला हूँ, मैं न कमाऊँ तो परिवार न चले, ये मेरे बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बड़े पद पर हूँ, मेरा नाम बहुत है, मैंने इतनी इतनी सेवाएं की हैं, मैं इतने सेंटर संभालता हूँ, ये सब मैंपन में आता है। मुझे सफलता बहुत मिलती है, मेरे पास प्लानिंग बुद्धि है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सुंदर है। सुंदर होगा, ये नहीं सुंदर नहीं है, लेकिन सुंदर होते भी, सुंदर करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए, बाबा पीछे से करा रहा है, इस सत्य को हम भूलेंगे नहीं। तो मैंपन पे बहुत ध्यान देंगे, और जब तक हमारे अंदर मैंपन है हमारा विकास भी नहीं होता। ये बड़ी गहरी बात है। मैंपन से जितना हम मुक्त होते जाएंगे, हमारी बुद्धि का बहुत ज़्यादा विकास भी होता जाएगा। और दूसरा, बाबा हमें यूज करता है सेवाओं में, लेकिन अगर हमारे अंदर मैंपन होगा तो बाबा हमें यूज नहीं कर पाएगा। हमारा मैंपन यहाँ दीवार बन जाएगा, और बाबा जो हमें देना चाहता है, कुछ हमसे बुलवाना चाहता है, कोई वरदान देना चाहता है, वो नहीं होगा। तो मैंपन हमारे अध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। नंबर वन में जाना है तो इस मैंपन को पहले छोड़ना है। बाबा की एक और बहुत गहरी बात आपको सुना दूं, मैंने जिससे सीखा था, ये मुझे पता चलता था कि मैंपन ये ईगो का एक रूप है, और योगी वही हैं जो ईगोलेस हों। जिस योगी के मन में ईगो बहुत है वो सच्चा योगी नहीं है। तो बाबा की बहुत सुंदर बात आई मुरली में, ब्रह्मा बाप नंबर वन में क्यों गए, क्योंकि उन्होंने मैंपन को नंबर वन में त्याग किया, सबसे पहले त्याग किया। मैंपन के त्याग में वो नंबर वन थे, इसलिए नंबर वन चले गए। तो हम इस बात पे बहुत ध्यान दें, अपने से पूछो, हमें डिवाइन बनना है, हमें आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करनी हैं। ये अब की जो सेवा हैं, ये अब के जो नाम मान सम्मान हैं, ये तो बहुत छोटे हो जाएंगे। असली मान तो उन्हें देगा संसार, किन्हें, जो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जिनकी दृष्टि से लोगों को लाइट निकलती हुई दिखाई देगी, जिनका एक एक संकल्प लोगों के विघ्नों को नष्ट करेगा। असली मान तो उन्हें मिलेगा, धन संपदा भी उन्हें बहुत मिलेगी। आजकल तो बहुत लोग धन संपदा के पीछे भाग रहे हैं, और कई लोग समझते हैं सेवाओं की ये सबसे बड़ी सफलता है। है भी, लेकिन संपूर्ण सफलता इसको नहीं कहते। तो हम नंबर वन में आना चाहते हैं तो हमारा पुरुषार्थ भी नंबर वन हो, नंबर वन को फॉलो करते रहें, जो हमारा बाबा है जिसने महान तपस्या की। मैं नहीं कहता कि आप सब उनकी तरह सब कुछ छोड़ देंगे, वो तो बाबा का पार्ट था, उन्हें बाबा का मीडियम बनना था, रथ बनना था, इसलिए शिव बाबा ने उनसे सब कुछ छुड़ाया, भी यज्ञ की रचना होनी थी। लेकिन आप सब जो ग्रस्त में रहते हैं उन्हें बाबा को फॉलो करना है, जैसे बाबा ने तपस्या की वैसे हम भी तपस्या करें, जैसे बाबा ने अपनी कमियों को एक एक को निकाल दिया, संपूर्ण प्योरिटी तक पहुंच गए, निर्विकारी स्थिति बना दी, चित्त को सबके लिए शुभ भावनाओं से भर लिया, ऐसे ही हम भी बन जाएं महान योगी महान तपस्वी। ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी बातें सुनकर कई बाबा के बच्चे सोचते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, इले नंबर वन में आना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन सबको ये सोचना है कि हम बाबा की किन किन अच्छी बातों को फॉलो कर सकते हैं, जो नहीं की जा सकती उसे छोड़ो। मैं आपको एक बात सुनाता हूं बाबा की, उसे आप फॉलो करें। केवल त्याग की बात नहीं, जब हम योगी बनते हैं तो त्याग तो स्वतः ही हो जाता है, जब हम वैरागी बन जाते हैं तो त्याग अभी करना नहीं पड़ता, सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। बाबा ब्रह्मा को भविष्य का नशा जबरदस्त था, हमें भी रहे। आप कहेंगे बाबा को तो पता था मैं नारायण बनने वाला हूं, हमें भी पता है हम महान देवता बनने वाले हैं, हमारे भी पद बहुत बड़े होंगे, हम भी सृष्टि की महान आत्मा हैं, हमारा भाग्य भी बहुत सुंदर है। मैंने कई बार सुनाया, दादी जान की अपना अनुभव सुनाती थी कि एक बार दिन के 3 बजे वो अपने कमरे की ओर जा रही थी, और कमरा जाता था हिस्ट्री हॉल का जो पैसेज है उससे निकल के रास्ता था, कमरा पीछे था, रास्ता इस पैसेज से था। तो दादी जा रही थी तो दादी ने क्या देखा, अभी उस टाइम सभी सोचते हैं दिन का 3 बजे के बाबा रेस्ट कर रहा होगा, लेकिन बाबा अकेला हिस्ट्री हॉल में डांस कर रहा है। और बाबा ने दादी जानकी को भी देख लिया, कहा आओ बच्ची। दादी ने पूछा बाबा क्या कर रहे थे, कहा बच्ची बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं जाकर नारायण बनूंगा इसलिए खुशी में डांस हो रहा है। तो देखो इसको तो हम फॉलो कर सकते हैं या नहीं, हमें करना है। तो सभी अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करें, अमृत वेले परम सुख प्राप्त करें। ऐसे नहीं अमृत वेले तो उठान जाता, फिर नंबर वन में कैसे आएंगे। ऐसे नहीं हमारे परिवार वाले तो हमें प्योरिटी अपनाने नहीं देते, नंबर वन में कैसे आएंगे। नंबर वन आत्मा माना, नंबर वन पावरफुल, पावर में भी नंबर वन, अपनी इनर पावर को बढ़ाते चलना है। कमजोर आत्माएं कोई नंबर वन में नहीं आएंगी। नंबर वन माना जैसा हम चर्चा कराए हैं जो सतयुग पर राज करेंगे, विश्व महाराजन होगा बीच में, छोटे छोटे स्टेट भी होंगे, तो कभी स्टेट में राजा रानी, कभी केंद्र में, कभी इस स्टेट में, कभी उस स्टेट में, और सतयुग के अंत तक जाते जाते तो पॉपुलेशन भी 2 करोड़ हो जाएगी, तो राजा भी बहुत हो जाएंगे। तो सतयुग पर राज करेंगे तो कमजोर आत्माएं राज थोड़ा ही करते हैं, राज वही करते हैं जो पावरफुल होते हैं। तो हमें नंबर वन पावरफुल भी बनना है ताकि परिस्थितियों से हम घबराएं नहीं, माया से हम घबराएं नहीं, और आने वाला जो भयानक परिवर्तन का समय होगा उसमें हम अपनी स्थिति को योगयुक्त अचल अडोल एक रस रख सकें। तो प्लान बनाना सभी, अपने योग की भी प्लानिंग करना, सवेरे उठकर कैसे आनंद लेना है प्रभु मिलन का उसकी भी प्लानिंग करना, और मुरली का भी बहुत सुख लेना ताकि ज्ञान का बल बढ़ता जाए। बेहद का वैराग्य ये भी बड़ा सब्जेक्ट है, और हमने इसकी लहर अपनी आंखों से यज्ञ में देखी थी जब बाबा अव्यक्त हुए थे। उसके बाद तो वो लहर खत्म होती गई और अब तो वैराग शब्द को कोई याद ही नहीं करता। वैराग आता है, शब्द आता है तो सोचते हैं जब होगा हो जाएगा, छोड़ो क्या करना है इसको, हम थोड़ा ही सूखे सन्यासी हैं, वैरागी हैं। लेकिन बाबा ने जैसे याद दिलाया, मैं आ गया हूं तुम सबको ले जाने के लिए, तुम्हारा 84 जन्मों का ये खेल पूरा हुआ, अब तुम्हें देह छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वापिस जाना है। मैं इसमें एक शब्द और जोड़ा करता हूं, सब कुछ छोड़कर और बाबा से सब कुछ लेकर वापिस जाना है। तो ये स्थिति अगर होगी, ये याद रहेगा, तो वैराग आता जाएगा। बाबा अव्यक्त हुए तो वैराग क्यों था? क्योंकि सबको ऐसा लगने लगा था कि बाबा गए, कर्मातीत हुए, तो अब जल्दी जल्दी खेल पूरा होगा, इसलिए हमें जल्दी जल्दी श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। तो पुरुषार्थ की एक लहर चल पड़ी थी बहुत अच्छी। अब ब्राह्मणों को ये पुरुषार्थ की लहर फिर से चलानी है। मैं कहूँगा तमिलनाडु जोन इसमें भी इनिशिएटिव ले ले, नंबर वन जाए कि एक वैराग की वेव क्रिएट करें हम अपने सेवाओं में, अपने जीवन में, अपने परिवार में। और वैराग कोई सूखा वैराग नहीं है हमारा कि हम अच्छा खाना न खाएं, प्यार से न रहें, किसी बात न करें, हम तो वैरागी हैं, अच्छे कपड़े न पहने, ये नहीं। आप ठीक ठाक रहो जैसे रहते हैं। पहली चीज, व्यर्थ से वैराग, जिसमें बहुत टाइम जाता है मनुष्य का व्यर्थ में। बहुत लोगों के तो 4-6-8 घंटे व्यर्थ में ही जा रहे हैं। आप कहेंगे इतना बड़ा आप कह रहे हैं, यही सत्य है, व्यर्थ जाता है। तेरी मेरी इधर की उधर की सोचते ही रहते हैं, लेकिन व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं है। टाइम को यदि हम वेस्ट करते रहेंगे, पर चिंतन में यदि हमारा ये अनमोल समय जाता रहेगा, तो सोचो हम ईश्वरीय आनंद कैसे लेंगे। तो एक धारण करेंगे व्यर्थ से वैराग्य, दूसरा धारण करेंगे विकारों से वैराग्य। आप कहेंगे ब्राह्मणों को तो विकारों से वैराग्य है, लेकिन कुछ को है कुछ को नहीं है। कईयों ने विकारों को अपनी प्रॉपर्टी माना हुआ है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। क्रोध को भी प्रॉपर्टी माना हुआ है, कोई इम्प्योर संस्कार है उसमें भी आसक्त है, आत्मा अटैच है, उसे छोड़ना नहीं चाहती। जो कुछ हम छोड़ना नहीं चाहते तो वो हमें वैराग्य नहीं माना जाएगा। वैराग्य का अर्थ है जो कुछ हम छोड़ना चाहते हैं एक सेकंड में छोड़ दें, सोचने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं, सोचा और छोड़ा। क्योंकि वैराग से त्याग स्वतः ही हो जाता है। चेक कर लें आप, मोह से वैराग्य है, बड़ा मीठा है ये मोह, बड़ा प्रिय लगता है सबको, लेकिन वैराग से भी मोह छोड़ते चलें। और मोह जबरदस्ती नहीं छोड़ा जाता, मोह छोड़ने का अर्थ है आत्मिक दृष्टि पैदा करना, तो अटैचमेंट स्वतः ही छूटते चलेंगे। अगला वैराग हमें धारण करना है व्यर्थ की इच्छाओं से। एक है आवश्यकताएं, एक है इच्छाएं। आवश्यकताएं जो हैं वो तो हमें करनी है, लेकिन जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं, उसको देखा ये इच्छा हुई, उसको देखा ये इच्छा हुई, किसी कपड़े को देखा उसकी इच्छा हुई। अब एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी मैं कहता हूं इसको, अब संसार में धन कमाने का भी कंपटीशन रहता है और धन चाहिए भी सबको, महंगाई का समय है, बच्चे हैं तो उनके लिए भी चाहिए, पढ़ाना भी है, फिर शादियां भी करनी है। एक ओर धन का कंपटीशन है, दूसरी ओर योगी बनना है, नंबर वन जाना है, क्या करें। अब धन कमाने में भी तो मेहनत पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, बुद्धि लगानी पड़ती है। बाबा का एक सुंदर महावाक्य पहले आपको सुनाऊं, जिनके पास ज्ञान धन बहुत है उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगती। विचार करेंगे, जिनके पास ईश्वरीय खजाने बहुत होंगे उनके पास स्थूल खजाने स्वतः ही आते रहेंगे, मेहनत कम पड़ेगी। ईश्वरीय खजानों की लिस्ट बनाओ, सुख शांति का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, दुआओं का, पुण्य कर्मों का, प्योरिटी का, ये खजाने हमारे, खुशी का खजाना, ये खजाने बढ़ाओ, स्थूल खजाने स्वतः ही मिलने लगेंगे। तो वैराग्य बैलेंस चाहिए, धन कमा भी रहे हैं और धन में आसक्त नहीं है। देखिए बाबा ने कितनी गहरी नॉलेज दी है, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, लेकिन निर्मोही हैं। बहुत सारे साधन जुड़ा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, अच्छा भोजन खा रहे हैं, लेकिन अनासक्त हैं। कितनी बड़ी चीज है ये, सेवा कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं, अपनेपन से कर रहे हैं, लेकिन मैंपन छोड़ रहे हैं। कितनी सूक्ष्म गति है, कितना सुंदर बैलेंस है। तो हम सभी बाबा जैसा बेहद का वैराग्य अपने जीवन में धारण कर लें, कहीं भी हमारी आसक्ति ना हो। इस संसार से हमारे कदम उठे हुए हों, संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए, मनुष्यों से कुछ नहीं चाहिए, फिर वही बात है कि हमें बहुत कुछ चाहिए भी, लेकिन ये संकल्प कि सब कुछ बाबा से लेना है, तो चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा, हमारी कहीं आसक्तियाँ तो नहीं हैं, हम कहीं अटैच तो नहीं हैं, हमने किनारे छोड़ दिए हैं, हमारे सभी आकर्षण समाप्त हो गए हैं, ये होगा हमारा बेहद का वैराग। और इसके लिए प्रैक्टिस वही पांच स्वरूपों का अभ्यास करते हुए, अब ये देह छोड़कर, ये परिवार छोड़कर मुझ आत्मा को वापिस जाना है, जैसे हम जा रहे हैं उड़ते हुए घर, परिवार भी छोड़कर जाना है या लेकर जाएंगे, सब आत्माएं बन के जाएंगी, तब तो कोई किसी को पहचानेगा नहीं कि ये मेरा बच्चा था, ये मेरी पत्नी थी, ये मेरा पति था, ये माँ थी, सब नाते देह के साथ छूट जाएंगे। तो इस तरह का अभ्यास करते हुए सबको रोज देखना है, सब आत्माएं हैं और हम सब आत्माओं को अब वापिस जाना है। तो तमिलनाडु वाले सभी अब एक कंपटीशन करें नंबर वन में आने का, अपने को इतना महान बनाएं कि सारा संसार हमें फॉलो करने लगे, बस इसकी जरूरत है। तो इस संसार में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन आएगा और तब ये सारा संसार बाबा की ओर बढ़ेगा, हर व्यक्ति कहेगा मेरा बाबा, मेरा गॉड बिलोंग्स टू मी, तब उन्हें मुक्ति का वरदान मिलेगा, वर्षा मिलेगा। तो सभी बहुत डिटरमाइंड थॉट के साथ इन दोनों बातों को आगे बढ़ाएंगे, नंबर वन लेंगे। मेरी शुभ भावनाएं आप सबके साथ हैं, सभी बहनों को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।